الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے محترم بزرگوں, دوستو اور بھائیو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ قرآن کریم کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں کو, صاحبان ایمان کو بڑے پیار سے ایک حکم دیا ہے اور ایک بات کی تلقین فرمائی, خطاب کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو مجھ پر ایمان لائے ہو. اور یہ خطاب بڑا محبت والا خطاب ہے, کیونکہ جب کسی شخص کو آپ, ایک تو صورت یہ ہے کہ اس کا نام لے کر پکاریں, اور ایک صورت یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو رشتہ ہے اس رشتے کا حوالہ دے کر پکاریں. جیسے باپ ہے, ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا نام لے کر اس کو پکارے, مثلا عبداللہ نام ہے تو عبداللہ کہہ کر پکارے, اور ایک صورت یہ ہے کہ اس کو بیٹا کہہ کر پکارے, یا ابتی یا بنیا, اے میرے بیٹے. یہ بات سنو, ظاہر بات ہے کہ پہلی صورت میں اتنا پیار نہیں, ایک تھوڑی سی اجنبیت سی ہے, نام لے کر پکار رہا ہے, اور بیٹا کہہ کر اگر پکارے تو اس میں ایک پیار ہے, اس میں ایک محبت ہے, اس میں اس رشتے کا حوالہ ہے جو کہنے والے اور سننے والے کے درمیان موجود ہے, محبت کا رشتہ. تو بعض جگہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس, اے لوگو, انسانوں, تو وہ سارے انسانوں کو خطاب ہوتا ہے. لیکن جب کرواتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, تو اے وہ لوگو جو مجھ پر ایمان لائے ہو, یعنی میرا تمہارے ساتھ جو رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے, تم مجھ پر ایمان لائے ہوئے ہو, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं। तो ये उन्वान बड़े प्यार का उन्वान है, बड़ी मोहब्बत का उन्वान है। ऐसा ही जैसे किसी कोई बाप अपने बेटे को बेटा कहकर पुकारे। तो इस प्यार के उन्वान से अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाते हैं कि उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालों अल्लाह को कसरत से याद किया करो, अल्लाह का कसरत से जिक्र किया करो। वसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, और सुबह शाम उसकी पाकी बयान किया करो, सुबह तस्बीह किया करो। यह हुक्म दे रहे हैं बारी ताला और प्यार से दे रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अल्लाह ताला ने जो यह हुक्म दिया कि भाई मुझे तुम कसरत से याद किया करो या मेरा कसरत से जिक्र किया करो, तो क्या अल्लाह तबारक व ताला का इसमें कोई फायदा है? क्या अल्लाह ताला को इस बात से मजा आता है अलियाज बिल्लाह, या उसको अल्लाह तबारक व ताला को इस खिताब से और अपने जिक्र से कोई लज्जत महसूस होती है? जाहिर है कि अल्लाह तबारक व ताला लज्जतों से और मजा आने से बहुत मावरा है, बहुत ऊंचा है, बहुत आली है। उसको किसी के जिक्र की हाजत नहीं। अगर सारी दुनिया और दुनिया का हर इंसान हर लम्हे सुबह से शाम तक अल्लाह ताला का जिक्र करता रहे तो उसकी शान इज्जत में, किब्रियाई में, उसके जलाल में, उसके जमाल में कोई हब्बा बराबर इजाफा नहीं होता। और अगर कोई शख्स, बल्कि सारी दुनिया अगर अल्लाह को भूल जाए, अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाए और मासियतों में मुबतला रहे तो उसकी शान जलाल और शान किबरियाई में कोई हब्बा बराबर कमी नहीं आती। इन्नल्लाहु अल-गनीयुल हमीद, अल्लाह ताला सबसे बेनियाज है, किसी को किसी की उसको हाजत नहीं है कि मेरी बंदगी करें, वो बंदगी करने की उसको कोई हाजत दरपेश नहीं है। वो बेनियाज है और हमीद है, बजाते खुद काबिल हमद है, काबिल तारीफ है, कोई तारीफ करे या ना करे। लिहाजा यह हुक्म जो दिया कि मुझे कसरत से याद करो, इसमें अल्लाह तबारक व ताला का तो कोई फायदा है नहीं, ना अल्लाह तबारक व ताला की कोई मसलहत है कि अपने जाती मसलहत की वजह से अल्लाह ताला फरमा रहे हो। लेकिन जो कुछ कहा जा रहा है वो खुद उन ईमान वालों के फायदे के लिए कहा जा रहा है कि जिनसे खिताब किया था ये कहकर कि तुम मेरे पर ईमान लाए हो। तो जब ईमान लाए हो तो ईमान लाने का एक नतीजा ये होना चाहिए कि तुम मुझे कसरत से याद करो, मेरा जिक्र कसरत से करो। और ये एक तरफ तो ईमान का मंतिकी नतीजा है। मंतिकी नतीजा ये है कि जब तुमने ये दिल में यकीन कर लिया और जबान से इकरार भी कर लिया कि हम सबको अल्लाह तबारक व ताला ने पैदा किया और वही हमारा परवरदिगार है, वही हमारी परवरिश करता है, तो हमारे पास जो कुछ भी है उसी की अता करदा है। आंखें हैं तो उसकी दी हुई है, जबान है तो उसने दी हुई है, कान है तो उसके दिए हुए हैं, चेहरा है तो उसका दिया हुआ है, हाथ पांव हैं तो उसके दिए हुए हैं। ये सब कुछ हमें कहीं बाजार से खरीद कर नहीं ले आए या हमने खुद से अपनी मेहनत से हासिल नहीं कर लिया, बल्कि हमें इस पर ईमान है कि ये सब कुछ, जो कुछ नेमतें हमें मुयस्सर हैं इस दुनिया में, वो सब अल्लाह जल्ल जलालुहु की अता है, उसी की दी हुई है और उसी के भरोसे पर हमारा सारा ये निज़ाम ज़िंदगी चल रहा है। तो जब ये बात है तो इसका मंतिकी नतीजा ये होना चाहिए कि आदमी कसरत से याद रखे इस बात को कि मेरे अल्लाह ने मुझे ये दिया, मेरे अल्लाह ने मुझे ये नेमतें अता फरमाई, मुझे अल्लाह ने मुझे पाला, मुझे बचपन से मुझे बड़ा किया, जवान किया, चलने फिरने की ताकत अता फरमाई, देखने की ताकत अता फरमाई, मैं जो कुछ कर रहा हूँ सब उसी की अता की वजह से कर रहा हूँ। तो ईमान का एक मंतिकी नतीजा तो यह है कि जब ईमान लाए तो फिर उस परवरदिगार का जिक्र भी करो, उसको याद रखो, आंख इस्तेमाल कर रहे हो तो याद रखो कि ये उसकी आता है, जबान इस्तेमाल कर रहे हो तो याद रखो कि ये उसकी आता है, कान इस्तेमाल कर रहे हो तो याद रखो कि उसकी आता है, इसलिए उसको याद करो। एक तो इसका एक तो मंतिकी नतीजा है और इस मंतिकी नतीजे के ऊपर फायदा भी यह है कि जितना बंदा अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करता है उतना ही उसको सवाब मिलता है, अजर अता होता है। एक सुबहान अल्लाह का कलिमा अगर मुंह से निकल गया, जिक्र की नियत से आपने सुबहान अल्लाह कह दिया एक मरतबा सुबहान अल्लाह, तो उसके बारे में हदीस में आता है कि वो मीजान अमल का पल्ले को भर देता है, यानी इतना वजन है उसमें सुबहान अल्लाह के कलेमे में कि वो मीजान अमल के पल्ले को भर देता है। सुबहान अल्लाह का कलेमा इतना अजर, अल्हम्दुलिल्लाह का कलेमा इसके बारे में भी यही फरमाया कि तमलाउल मीजान, मीजान को भर देता है। तो उसका एक फायदा यह है कि जितना भी जिक्र करेगा इंसान उतना ही उसको आखिरत में अजर मिलेगा। एक एक कलेमा जो मुंह से निकल रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है अल्लाह तबारक व तआला का, जितने मरतबा सुभान अल्लाह कहा वो अल्लाह के यहां लिखा जा रहा है कि इतनी मरतबा मेरे बंदे ने सुभान अल्लाह कहा था, इतनी मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहा था, वो लिखा जा रहा है और हर कलमे के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला के यहां से सवाब मुरतब होता है। एक फायदा तो असली फायदा जिक्र का यह है। दूसरी बात यह है कि अगर गौर करो तो दुनिया में जितने गुनाह होते हैं, जितनी नाफरमानियां होती हैं, जितनी बदउनवानियां होती हैं, जितने जुल्म होते हैं, उनकी असल वजह अगर देखो तो असल वजह यह है कि बंदा उस वक्त में अपने परवरदिगार को भूल गया होता है तो गुनाह करता है। चोर जब चोरी करता है तो क्यों करता है? इसलिए करता है कि वो उस वक्त में अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गया, अल्लाह की याद से गाफिल हो गया। उसको यह एहतियात होना चाहिए था कि मेरा परवरदिगार है, मुझे उसने चोरी से मना किया है और वो मुझे देख रहा है और मुझे देखने के बाद मेरे इस अमल की मुझे सजा भी भुगतनी पड़ेगी, ये ख्याल होना चाहिए था उसके दिल में, लेकिन वो भूल गया होता है। जाहिर मुझसे नजर आ रहा होता है कि मैं चोरी करके इतने पैसे कमा लूंगा, इतने पैसे हासिल कर लूंगा, उस पैसे की तरफ ध्यान होता है और पैसे से हासिल होने वाले फवायद की तरफ ध्यान होता है, लेकिन यह ख्याल नहीं होता कि यह मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है, वो मुझे उसने मुझे इससे मना किया है, मुझे इसके ऊपर आखिरत में जाकर इसका अजाब का सामना करना पड़ेगा, यह ख्याल उसके दिल से महव हो चुका होता है, इस वास्ते चोरी करता है। रिश्वत लेने वाला, आजकल अफसोस है कि हमारे माहौल के अंदर हराम खोरी और रिश्वत सितानी, रिश्वत का गुनाह इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जिसकी कोई हद्दो हिसाब नहीं। तो जब कोई रिश्वत ले रहा होता है, जानता है कि ये रिश्वत हराम है और ले रहा होता है, तो वो अल्लाह को भूल गया होता है। अगर अल्लाह याद होता कि मुझे अल्लाह ताला क्या एक एक पैसे का हिसाब देना है, एक एक पैसे का हिसाब देना है मुझे, तो अगर ये ख्याल उसके दिल में होता और अल्लाह तबारक व तआला का कि याद उसके दिल में होती, तो कभी रिश्वत लेने का इकदाम न करता। जिन लोगों के दिल में अल्लाह ताला अपना खौफ अता फरमाते हैं, अपनी याद उनके दिल में बिठा देते हैं, तो फिर वो उनको लाखों की, करोड़ों की, अरबों की भी पेशकश हो जाए, लेकिन वो ठोकर मार देते हैं कि ये दुनियावी जिंदगी का जो साजो सामान है ये इस लायक नहीं है कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए, इसको मैं ठोकर मारता हूं और सिर्फ रिज़्क़ हलाल के ऊपर अपना गुजारा करूंगा, चाहे वो थोड़ा हो लेकिन वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है, उसी में अल्लाह ताला मुझे बरकत अता फरमाएंगे, उसी से मेरा फायदा होगा, और हलाल के अलावा कोई और रिज़्क़ आएगा तो मैं वो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है। जब जो रिश्वत लेने वाला रिश्वत ले रहा होता है, गाफिल होता है अल्लाह के जिक्र। इसी को एक हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज में ताबीर फरमाया कि ला यज़नी ज़ानी हिना यज़नी व हुवा मोमिन, वला यसरिकु सारिकु हिना यसरिकु व हुवा मोमिन, कि जब जिना करने वाला जिना करता है तो उस वक्त वो मोमिन नहीं होता, चोरी करने वाला जब चोरी करता है तो वो उस वक्त मोमिन नहीं होता। क्या मतलब है इसका? ये मतलब नहीं कि जिना से काफिर हो जाता है इंसान या चोरी से काफिर हो जाता है, नहीं, मतलब ये कि ईमान का जो लाजमी न तकाजा था कि वो अपने अल्लाह को याद रखता, गुनाह करते वक्त उसको अल्लाह ने अल्लाह को भूल गया, अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश होने के एहसास को भूल गया, इस वास्ते उस बदअमली में मुबतला हो गया, चाहे वो जिना हो या चोरी हो या कोई और गुनाह हो। तो जितनी जुल्म है, जुल्म हो रहे हैं दुनिया में, रिश्तेदारों पर जुल्म करते हैं। अब देखो हमारे माशरे में ये एक वबा आम है कि जब किसी का इंतकाल होता है तो उसकी औलाद जो है वो विरासत को सही तकसीम नहीं करती। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि जो शख्स अपने बाप के जायदाद पर काबिज है बस वही अपना हथिया लेता है उसको, दूसरे जो वरसा हैं जिनका अल्लाह ताला ने विरासत में हक रखा है तो उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं, बस मेरे कब्जे में है, बस मैं ही इस्तेमाल करूंगा, मेरा मेरे बाप का इंतकाल इसी घर में हुआ, मैं इसी घर में रहता था, बस मैं इसका वारिस हूं और मैं ही इसका बाली हूं और मैं इसका मालिक हूं। कभी ख्याल भी नहीं आता कि भाई इसमें दूसरे बहन भाइयों का भी हक है, ख्याल ही नहीं आता। और क्योंकि बड़ा भाई है मसलन, तो वो छोटे भाइयों के ऊपर अपनी बड़ाई जिताता है, और अगर छोटा भाई कभी जुरत करके कह भी दे कि भाई मिरास के सिम करनी चाहिए तो कहता है तू बेअदब है, बड़े भाई का तेरे दर में, बड़े भाई का तेरे दिल में ख्याल नहीं, बड़े भाई का तेरे दिल में अदब नहीं, और वो मीरास तकसीम करने पर राजी नहीं होता। क्यों नहीं होता? इस वास्ते कि वो अल्लाह से गाफिल है, अल्लाह की याद से गाफिल है। अगर उसको अल्लाह की याद उसके दिल में होती, अल्लाह का जिक्र उसके दिल में होता, ये ख्याल होता कि मुझे आखिरत में इस जायदाद की एक एक इंच का हिसाब देना होगा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, तो कभी यह हरकत ना करता। और बाज मरतबा ऐसा होता है, ये तो बहुत कसरत से है हमारे माशरे में, कि अगर मीरास तकसीम की भी तो बस भाई भाई ले उड़ते हैं, औरतों को मीरास में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता। ये एक आम वबा है जो हमारे माशरे के अंदर फैली हुई है। दिमाग में ये बात होती है कि भाई औरतें तो अपने घर की हो गई, ان کی شادیاں ہو گئیں، ان کے شوہر موجود ہیں، لہذا ہمیں ان کو میراث دینے کی ضرورت نہیں. حالانکہ قرآن کریم نے صاف صاف فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون والنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ جو والدین یا رشتہ دار جو مال چھوڑ کر جائیں اس میں جس طرح مردوں کا حصہ ہے اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے. لیکن پورا معاشرے میں کہیں، خاص طور سے ہمارے جو دوسرے سندھ ہے، پنجاب ہے، سرحد ہے، بلوچستان ہے، ان کے اندر یہ وبا عام ہے کہ لڑکیوں کو میراث سے محروم کر دیا کیا جاتا ہے. اور اگر کسی دل کے دل میں کچھ تھوڑا بہت خیال بھی آئے تو وہ عورتوں سے معافی نامہ زبردستی لکھوا لیتے ہیں کہ جی ہم نے اپنا حصہ معاف کر دیا. اس طرح حصہ معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا، جبکہ زبردستی لکھوایا گیا ہو، بغیر ان کی خوش دلی کے لکھوایا گیا ہو، وہ حصہ معاف نہیں ہوتا. اور حصہ اگر کسی کو معاف کرنا ہو تو اس کا بھی ایک شرعی طریقہ ہے، وہ جب تک کہ اپنایا نہ جائے اس وقت تک معاف نہیں ہوتا حصہ. لیکن لوگ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں، یہ ظلم اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل میں خیال نہیں، اس کا ذکر نہیں، اس کی یاد نہیں. اگر دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد پوشیدہ ہو تو پھر انسان کوئی ایسا گناہ نہ کرے. اللہ اکبر کبیر. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آدھی سے زیادہ دنیا کے حکمران تھے تو رات کے وقت میں بعض اوقات وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے. آدھی دنیا کا حکمران وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں کوئی کسی پر زیادتی تو نہیں ہو رہی، کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا. تو آخر شب میں جو تہجد کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گشت کر رہے تھے تو ایک مکان کے پاس سے کچھ آوازیں آئیں، ایک گھر کے پاس سے، جیسے دو عورتیں کوئی آپس میں باتیں کر رہی ہوں. جب قریب پہنچے سنا تو ایک عورت، بوڑھی عورت، وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی یہ تمہارا جو دودھ تم نے نکالا ہے جانور سے تو اس دودھ میں کچھ پانی ملا دو تاکہ یہ زیادہ ہو جائے اور ہم زیادہ فروخت کر سکیں. تو بیٹی نے کہا کہ اماں جان یہ امیر المومنین کا حکم آیا ہے کہ کوئی شخص دودھ میں پانی نہ ملائے بلکہ جو اصلی دودھ ہے خالص وہی فروخت کرے، امیر المومنین کا حکم ہے. تو اس ماں نے جواب دیا کہ امیر المومنین یہاں کی تیرے پاس بیٹھا ہے جو تجھے دیکھے کہ دودھ میں پانی ملا رہی ہے، وہ تو تیرے پاس موجود نہیں ہے، اس کو کیا پتہ لگے گا تو نے اگر ملا دیا دودھ تو. تو اس پر بیٹی نے کہا کہ اماں جان امیر المومنین تو یہاں موجود نہیں ہے لیکن امیر المومنین کا اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، لہذا میں یہ کام نہیں کر سکتی. اب یہ جو اس کے خیال آیا کہ رات کا اندھیرا ہے، اپنے گھر کی تنہائی ہے اور اس میں کوئی دیکھنے والا مجھے موجود نہیں ہے، لیکن دماغ میں یہ آیا کہ اللہ ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، لہذا اس نے یہ کام کرنے سے انکار کر دیا. حضرت فاروق اعظم سب ماجرا دیکھ رہے تھے، باہر سن رہے تھے. ماں تو کہہ رہی تھی کہ امیر المومنین کہاں بیٹھا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہوگا تجھے، لیکن امیر المومنین دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے سب کچھ. تو اگلے دن حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے उनके घर में पैगाम भेजा उस लड़की से अपने साहबजादे का कि ये बेटी है जो सही माना में अल्लाह की याद इसके दिल में बैठी हुई है, अल्लाह का खौफ इसके दिल में हर वक्त मौजूद है और ये हर वक्त ये समझती है कि मुझे अल्लाह देख रहा है, तो इससे बेहतर कोई और लड़की नहीं हो सकती। तो अपने बेटे का निकाह का पैगाम दिया उसको, चुनाचे उसके साथ निकाह हुआ बेटे का, और इन्हीं की औलाद से हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। इन दोनों के मिलाप से, इनकी नस्ल से हजरत खलीफा उमर इब्ने अब्दुल अजीज जो खलीफा खामिस कहे जाते हैं, खलीफा राशिद, वो उमर सानी, वो इनकी औलाद से पैदा हुए। तो ये अल्लाह तबारक बताला ने बच्चियों के दिल में भी ये एहसास बिठा दिया था उस सलफ सालेहीन के जमाने में कि अल्लाह मुझे देख रहा है। ये काहे से? जिक्रुल्लाह से, अल्लाह का जिक्र करने से। तो जिक्र खुदाबंदी ये ऐसी चीज है जो इंसान के दिल पर पहरा बिठाती है। आप थाने हजार कायम कर लें, अदालतें हजार लगा लें, लेकिन थाने में भी रिश्वत चलेगी, अदालतों में भी चलेगी और इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ हासिल करने का एक ही रास्ता है कि दिल में खुदा का खौफ पैदा हो, दिल में अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र हो। तो जब बंदा कसरत से जिक्र करता है अल्लाह तबारक व तआला का, चलते फिरते उठते बैठते जबान पर उसके जिक्र हो, कोई सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहू अकबर, वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलियिल अज़ीम, कोई भी जिक्र हो जबान पर चलते फिरते उठते बैठते, तो उसका नतीजा बिलाखिर यह होता है कि अल्लाह की याद दिल में बैठती है, अल्लाह के सामने पेश होने का एहसास दिल में पैदा होता है और फिर वो इंसानों को गुनाहों से रोकता है, जुल्म से रोकता है, दूसरे का हक छीनने से रोकता है। यह जिक्र अल्लाह तबारक व तआला अकलमंद उन लोगों को करार दिया जो अल्लाह का जिक्र करते हुए खड़े हुए भी बैठे हुए भी, वाला जुनूबिहिम लेटे हुए भी, जिस हालत में भी हो अल्लाह ताला का जिक्र करते हो, उनको फरमाया कि यह है उलुल अलबाब, जबरदस्त अकल वाले। एक तो अकल का लफ्ज होता है और एक लुब होता है, दोनों में फर्क है। अकल तो आम अकल है और लुब जिसको कुरान अलबाब कह रहा है, यह अकल की वो गहराई है, अकल की वो गहराई है जैसे किसी बादाम के अंदर मगज होता है, इसी तरह अकल के अंदर एक मगज है। वो मगज क्या है? वो लुभ है, वो हकीकी अकल है, ये नुमाइशी अकल नहीं, जाली अकल नहीं, हकीकी अकल। वो उन लोगों के लिए कह रहा है कि जो यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन, जो खड़े और बैठे और सोते लेटे अल्लाह का जिक्र करते हो। एक हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने सवाल किया, क्या रसूलुल्लाह सबसे अफजल अमल कौन सा है? तो आपने फरमाया, अन यकून लिसानु का रतबम बिज़िक्रिल्लाह, वो यह है कि तुम्हारी जबान अल्लाह के जिक्र से तर रहे, चलते फिरते उठते बैठते जबान पर जिक्र हो, और इस नीयत से हो, इस नीयत से हो कि मैं अल्लाह को याद कर रहा हूं, ये अल्लाह की याद मेरे दिल में बैठ जाए और फिर मुझे हर तरह के गुनाहों से रोके, अल्लाह ताला की इताअत पर आमादा करे, उसके नाफरमानी से परहेज करने की के ऊपर आमादा करे। इस नियत से जब बंदा जिक्र करता है चलते फिरते उठते उठते, और ये ऐसा अमल है जिसमें ना कोई पैसा खर्च होता है, ना कोई मेहनत है, ना कोई मशक्कत है, ना कोई वक्त खर्च होता है। आदमी चल रहा है जबान पर जिक्र है, कोई भी जिक्र, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, दुरूद शरीफ, जो भी जिक्र जबान पर आ जाए चलते फिरते अगर बंदा वो उसका जबान उसे तर रहे जिक्र, तो फिर वो जिक्र रफ्ता रफ्ता पहले जबान से होता है, پھر زبان سے کے راستے سے دل میں سما جاتا ہے, اور جب دل میں سما جاتا ہے تو پھر وہ انسان کو ہر طرح کی گناہوں سے روکتا ہے, ناانصافی سے روکتا ہے اور ظلم سے روکتا ہے, اور اس کو اطاعت خداوندی پر آمادہ کرتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اے ایمان والو, اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کی رضا کے مطابق کرنے اور کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
www.dasquran.com